फरिश्तों ने क्या किया इस हुक्म को सुन के, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तो सजदा किया तमाम फरिश्तों ने मिलकर, देखिएगा अजमाउन पे, ये नहीं कि एक उठा फिर गया ढीला ढाला, अच्छा जी एकदम हैंड्स अप, सबके हाथ खड़े, खड़े हो जाओ सब, खड़े चल पड़ो सब चल पड़े, बिल्कुल एक फौजदारी का डिसिप्लिन दिखता है। अल्लाह करे हमारे अंदर भी याद है, हम तो बात सुन के भी कितनी देर पहले सोचते हैं कि अच्छा ये तो मेरे लिए तो नहीं है। कुल्लुहुम सारे अजमाउन यकमुश सारे उठ पड़े, यानी ताकीद दर ताकीद है कि फरिश्तों में कोई एक भी नहीं था जो अल्लाह का ये हुक्म सुनकर बैठा रहा। उसमें जिब्राइल भी थे, मिकाइल भी थे, इसराफील भी थे और सारे फरिश्ते थे, सब झुक गए। हाँ मगर एक नहीं झुका, कौन? इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। क्यों? अबा, इनकार किया। किस बात से? अय्यकू नमाज साजिदीन, कि वो सजदा करने वालों के साथ हो। अबा कहते हैं शिद्दत इनकार से किसी चीज़ से रुकना, अनकारा युन किरु, इससे हल्का दर्जा है। आप देखिए एक लफ्ज़ ना इनकार, ये भी अरबी का लफ्ज़ है जो हम बोलते हैं, लेकिन इनकार में इतनी शिद्दत नहीं है जितनी अबा में है। सूरह बकरा में भी पढ़ चुके, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, यानी रिजिस्ट करने का मानी मुझे समझ आ रहा है इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए, रिजिस्ट किया। हाँ हूँ मुझे कहा, क्या कहते हैं, फिर बुड़बुड़ाता हुआ उठा, नहीं। सूरह कहफ की आयत 50 में हम पढ़ेंगे, काना मिनल जिन्नी, तो गोया कि वो जिन्नों में से था। वहाँ क्यों आ गया, इस पर हम बात कर चुके कि वो इन फरिश्तों के साथ बैठ कर फरिश्तों में आ गया था। और इसी तरह बाज़ कहते हैं कि कहकर फरिश्तों को, पूरी मखलूकात को झुकाया गया था आदम के सामने। दोनों ही बातें ठीक हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि असल तो हमारा काम आगे है। खैर, इब्लीस ने इनकार किया। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाया, या इब्लीस, ओ इब्लीस, मालका, क्या है तुझको, तू क्या समझते अपने आप को, क्या है, क्या तू, तेरी हस्ती क्या है, अल्लाह तकूना मा साजिदीन, कि तू सजदा करने वालों में ही ना हुआ, तू क्या समझते अपने आप को, बड़ी अकड़ है तेरे अंदर, सारे सजदा कर रहे हैं तू नहीं कर रहा। डायरेक्ट अल्लाह ने इब्लीस से क्वेश्चन किया। अब ज़रा इस गुस्ताख का जवाब सुनिए और इसको हाईलाइट कीजिए और अपने जुमलों को हम खुद नोट कर लें कि कहीं शैतान की तरह हम भी इसी तरह की गुस्ताखियां तो नहीं करते क्या। काला, इब्लीस बोला, उसने कहा, लम अकुल लियास जुदा ली बशरिन, मेरे लिए ये रवा नहीं है कि मैं सजदा करूं किसी बशर को। कौन सा बशर? खलकतहू मिन सलसाले मिन हमाइम मसनून, जिसे तूने पैदा किया खनखनाती हुई गारे की मट्टी से। यहाँ से देखिए कि इब्लीस को भी हमारी असल पता है, ताना दे रहा कि अल्लाह ताला तू उस आदम के आगे मुझे झुकाता है जिसको तूने गली हुई मिट्टी से पैदा किया, यानी जिस इंसान को तूने हमाए मसनून से पैदा किया उसके आगे मुझे झुकाता है। क्या कह रहा है अल्लाह के हुक्म के आगे? जुबान चला रहा है, लिख लीजिए इस आयत के आगे, जुबान चलाता है। एक तो बात नहीं मान रहा और आगे से देखिए पटर पटर बोलता है, रीजनिंग कर रहा है, लॉजिक्स पेश कर रहा है, ये है और वो है और तू इस तरह मुझे उसके आगे झुका रहा है जो बहुत ही है, और क्या कर रहा है, अक़ल का इस्तेमाल कर रहा है। قال فخرج منها فإنك رجيم, अल्लाह ताला ने फरमाया बस तू निकल जा इनमें से, तुम यकीनन मर्दूद हो चुके हो। किस में से निकल जा? मिनहा, जन्नत से निकल जा, एक तफसीर, और ज़ुमरतुल मलाइका, यानी फरिश्तों के गिरोह से निकल जा, तू निकल जा। सूरह अल आराफ में आता है फहबित मिनहा, निकल जा। सूरह बकरा में क्या आता है? फहबितु मिनहा जमिया, सब निकल जाओ। अल्लाह ताला ने फौरन एक शाही फरमान दे दिया कि यहाँ से निकल जाओ, तुम मर्दूद हो, रजीम, रजम शुदा हो। और साथ ही साथ वइन्ना अलैकल लानत इला यौमिद्दीन, और यकीनन तुम पर लानत रहेगी रोज़े जुज़ा तक। कितनी लानतें और कितनी बातें इसमें आई हैं, लफ्ज़ लानत सुन के इंसान कांप जाता है। पहले जन्नत से निकलवाया, उसको रजीम कहा, लानत उस पर पेश की और कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। आज भी कितने काम हैं जिस पे अल्लाह ताला की लानत की बात है लेकिन हम वो नहीं छोड़ पाते। अल्लाह ताला कहते हैं फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, फिर भी झूठ बोलते हैं और दलाइल के साथ झूठ बोलते हैं। खैर, अब इसकी ज़रा अक़ल ठिकाने आई। काला रब्बी, ऐ मेरे रब, ये लफ्ज़ रब्बी को नोट कीजिए। ये भी नहीं बेचारा कह रहा कि रब्बे आदम, रब्बी इब्राहिम, रब्बी मोहम्मद, براہ راست رب کو پکار رہا ہے. فانظرنی لا یوم یبعثون, ربی فانظرنی لا یوم یبعثون, اے میرے رب مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. نوٹ کیجیے, اپنے اٹھانے کی بات نہیں کر رہا, یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اچھا, قال فإنک من المنظرین, اللہ نے بھی ایک شاہی فرمان کی طرح کہا, جب مانگو جو مانگتے تمہیں دیا جائے گا, جو تمہیں مہلت دے دی گئی جو تم نے مانگا اس کی. کس چیز کی مہلت مانگی؟ نمبر ایک لمبی زندگی, اور دوسری دوسروں کو بہکانے کی مہلت مانگی. کب تک؟ علاوہ یوم الوقت المعلوم, وقت معین کے دن تک. یہ کون سا دن ہوگا؟ روز قیامت تک تم زندہ رہو گے. ویسے تو جنوں کی عمریں انسانوں سے کافی زیادہ ہوتی ہیں, مگر کوئی ایسا جن نہیں جو ابتدائے خلق تخلیق سے لے کر آج تک زندہ ہو, سوائے اس ایک جن کو جس کو ابلیس کہا گیا. عزازیل اس کا نام روایت میں آتا ہے. آج جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کی اولاد اور اس کی ذریت ہے. اب اس کو سمجھ آئی کہ اچھا یہ بات بھی مانی گئی ہے, تو بولا قال ربی بما اغویتنی, پھر ربی دوبارہ کہنے لگا میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. کس پہ اپنے بھٹکنے کا الزام لگا رہا ہے؟ اللہ پہ. چونکہ تو نے مجھے بھٹکا دیا, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, تو یقیناً میں خوبصورت کر دکھاؤں گا ان کو زمین, یعنی میں مزین کر دوں گا ان کے لیے دنیا کو, حالانکہ دنیا تو اللہ پہلے ہی بنا چکا تھا. تو یہ دنیا کو کیسے خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں گناہوں کو خوبصورت کر رہا ہے, نافرمانیوں کو خوبصورت کر رہا ہے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور البتہ ضرور میں گمراہ کر دوں گا ان سب کو, سب کو بہکا دوں گا. دنیا میں ایسی کشش ڈال دوں گا, بیکار ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو سب سے حسین یہی لگے گی. تیرے حکموں کو بھول جائیں گے, اس دنیا میں کھو کے رہ جائیں گے, اتنی خوبصورت آخرت پسے پشت ڈال دیں گے, سب پیچھے آئیں گے. ہاں مگر ایک قسم ایسی ہے جن پہ میرا زور نہیں چلے گا, اور وہ کیا؟ الا عبادک, پہلے نوٹ کیجئے, مگر تیرے بندے. عبادک کون سے؟ منہم المخلصین, ان میں سے جو خالص کیے گئے. اللہ اکبر. شیطان جن سے ڈرتا ہے وہ ہے مخلص. دیکھیں لفظ مخلص ہے, پیچھے بھی بات ہوئی, یہ بار بار آئے گی بات. ایک لفظ ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص. مخلص ہوگا تو کیا بنا؟ فاعل, آبجیکٹو انگلش میں کام کرنے والا. اور مخلص کیا ہے؟ مفعل کا وزن, جو خالص کر لیا گیا. یہ کون سا ہے؟ سبجیکٹو. دونوں میں فرق کیا؟ دیکھیے ایک وہ شخص ہے جو مخلص ہے, ابھی تک سٹرگل کر رہا ہے کہ میرے اندر اخلاص آ جائے. شیطان اس سے نہیں ڈرتا, اس کو بھی بہکا لیتا. اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن سنت طریقے نہیں ہیں, وہ بڑے خلوص سے شرک تک کر رہے ہیں. کئی لوگ ہیں جو غلط سے غلط کام کرتے ہیں لیکن اندر سے نیتیں بڑی اچھی ہیں. مخلص کون ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ اسوہ حسنہ پہ عمل کریں, سنتوں پہ عمل کرنے والا. اللہ کی رضا کے لیے جب کام کر رہا ہے نا, ایسے بندے پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. تو گویا کہ شیطان نے خود اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا کہ جس چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے نا وہ اخلاص ہے اور اس کے ساتھ سنت طریقے ہیں. لوگ دین کے نام پہ جو مرضی کریں, اخلاص کے ساتھ کریں, میں ان کو بھی بہکا دوں گا. لیکن جنہوں نے یہ باندھ لیا کہ ہم نے نبی کے طریقوں سے ادھر سے ادھر نہیں ہونا, ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات سن کے فرمایا, قال ھذا صراط علی مستقیم, فرمایا یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے. کون سا راستہ؟ یہ اخلاص کا راستہ. مخلص بندہ ہی وہ بندہ ہے جو صراط مستقیم پہ. اللہ کہتے ہیں یہ بات ڈن, معاملت ہے, تمہیں مہلت دے دی, مجھ تک پہنچنے کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے. تم بہکا لو کر لو, لیکن تمہیں بتا دوں کہ ان عبادی لیس علیک علیہم سلطان, یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا. यानी सिर्फ मुखलस नहीं बल्कि किसी भी इंसान पर तुझे कोई इख्तियार नहीं होगा। और पीछे पड़ चुके सूरह इब्राहिम में शैतान खुद इसका इकरार करेगा क़यामत के दिन कि मेरा तुम पर कोई ज़ोर तो नहीं था, इल्ला हाँ सिर्फ तेरे हाथों में वही तरने वाला बनेंगे कौन, मन तबअक मिनल गावीन, सिवाय उनके जो खुद तेरी पैरवी करेंगे गुमराहों में से। ये है गावीन, गावी की जमा, जिनके अपने अंदर सरकशी होगी, जो अपने तौर पे नफ्स परस्ती की तरफ मायल होंगे, जो खुद अपने ही पुजारी होंगे, वो तेरा नाम लेकर तेरी तरफ मायल हो जाएंगे। अब तू जहाँ रहे या जहाँ वो रहें हमें इससे कोई परवाह नहीं। वइन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमाइन, और यकीनन जहन्नम ही इन सब के वादे का ठिकाना है। मौइद कहते हैं वो जगह जिसका वादा किया हो, यानी जिस जगह तुम सबको फेंका जाएगा वहाँ जाने का ठिकाना जहन्नम है। कैसी है वो जो जगह, लहा सबतु अबवाब, इस जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7 डोर्स ऑफ हेवन। लिकुल्ली बाब मिनहुम जुज़ुम मक्सूम, इनमें से हर दरवाजे का एक हिस्सा है मुकर्रर करदा, यानी जहन्नम के हर दरवाजे में से दाखिल होने वाले जिन्नों और इंसानों के लिए मखसूस है, उनके गुनाहों के एतबार से, उनके दर्जों के एतबार से। ये तो वो लोग हैं जो तेरे हाथ में आ जाएंगे, लेकिन इसके बरक्स इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, इसके बरक्स मुत्तकी लोग होंगे बागात और चश्मों में। क्या कहा जाएगा उनसे, उदहुलू हाबी सलामिन आमिनीन, इनसे कहा जाएगा तुम दाखिल हो जाओ इन बागात में सलामती के साथ, बेखौफ व ख़तर, कोई फिक्र नहीं, अमन चैन, कोई अंदेशा नहीं। ये तो हम कहेंगे लेकिन उन्होंने भी तो कुछ रोग पाले हुए थे, तो उसका क्या इलाज है। आयत 47, व नज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, और हम निकाल देंगे इनके सीनों में से जो कुछ भी कदूरत होगी, बुरे जज्बे होंगे, एनिमिटी होगी, जो दिलों में बुगज आ जाता है वो होगा, हम इसको निकालेंगे। सूरत अल अराफ़ आयत 43 में भी हम यही बात पढ़ चुके, सब रंजिशें, कदूरतें, शिकायतें, ये सब निकाल देंगे, हत्ता कि क्या होगा, इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, भाई भाई बनकर वो बैठे होंगे तख्तों पर आमने सामने। जब किसी से नाराज़गी होती है ना तो इंसान उससे आंखें नहीं मिलाता, लेकिन चूँकि अहले जन्नत के दिल एक दूसरे से बिल्कुल साफ़ होंगे तो जैसे शीशे के सामने इंसान बैठ के अपने आप को देखता है, इस तरह वो शीशे जैसे साफ दिलों के साथ अपने भाइयों से बातें करेंगे। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन, नहीं पहुँचेगी इनको इसमें कोई भी तकलीफ थकन, क्योंकि मेहनतें तो सारी दुनिया में करके आए, दुनिया में तो कोई टाइम मिला ना इनको, वहाँ तो थकते रहे लेकिन जन्नत में तो कोई मुश्किल नहीं। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, और ना ही वो इनमें से निकाले जाएंगे, वहाँ इनको मिलेगा ये सब कुछ, कोई खटका नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बस एक दफ़ा निकल गए। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, वही लफ्ज़ है, मुखरिज नहीं है, मुखरज है, किसी में जुरत नहीं है कि जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद वहाँ से निकलने की बात कर दे। और ये सारी बातों के बाद लोगों को एक बात सुना दो, और वो क्या, नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंदों को इस बात की खबर दे दो कि मैं यकीनन बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला हूँ। एक तरफ तो ये हाल है तुम्हारे नदामत भरे दिलों के ऊपर, जब आंसू गिरते हैं शर्मिंदगी के तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, जब तुम मेरे बंदों पर रहम करते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहम का मामला करता हूँ, और अगर ऐसा नहीं तो दूसरी भी सूरत है, वन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और ये कि मेरा अज़ाब भी बहुत दर्दनाक है, हूँ मैं गफूर रहीम मगर मेरे अज़ाब बड़े सख्त है। किस पर, जो निडर होकर गुनाह करे, जो दिलों में खोट कपट रखे, जो अपने नफ्स को बड़ा समझे। यही है कैफियत जिसको ईमान की तारीफ में शामिल किया गया कि अल ईमान बैनल खौफ वर रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद के बीच की चीज़ का नाम है, अल्लाह की रहमत और मगफरत की उम्मीद होना और अपने गुनाहों का खौफ होना। डे वन पे अल्लाह ताला ने आदम और इब्लीस के इस किस्से में कायनात का क्रिएशन प्लान समझा दिया, दोस्त और दुश्मन का फ़र्क बता दिया और शैतानी रवैये भी बता दिए। काम सारे गलत खुद करता है और दूसरों के साथ बड़ी बात करता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो फिर दुनिया में आकर शैतान के प्लान्स को हवा देते हैं। जैसे किसी ने एक छोटी सी कोटेशन सी भेजी, ऐसे ही एक एज्यूम शक्ल बनी हुई है इबलीस की, कांप रहा और कह रहा है कि भाइयों, मुझे तो अब 1 महीने के लिए कैद किया जाने वाला है, यानी रमज़ान की आमद है, तो उस पर किसी ने लिखा था, लेकिन मेरे बच्चों तुम अपना काम करते रहना। और उसके जो बच्चे नीचे बने हुए ना, सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, मेरा अपना कोई पर्सनल व्यू नहीं है उसमें। एक के ऊपर फेसबुक लिखा हुआ है, एक पे यूट्यूब लिखा हुआ है, एक पे कुछ और लिखा हुआ है, यानी कि इसका गलत इस्तेमाल करवाते रहना, अब मैं तुम्हें रमज़ान के बाद मिलूँगा। आज मैं और आप इन सारी बातों को अब मेरे बग़ैर किसी इजाफे के सुन रहे थे, सिर्फ मैंने आपके सामने तर्जुमा रखा है हल्का सा उसको खोलने के लिए। किसको ये कहानी नहीं पता, किसको ये इबलीसी रवैये नहीं पता, और कितने हैं फिर वही काम करते हैं जो इबलीस ने किए। क्या कसूर था शैतान का? रब भी मानता, रब को रब मानता ना, इबादत करता था, लेकिन क्या नहीं कर सका, इताअत नहीं कर सका। एक जुमला बड़ा बड़ा लिखे पूरे रमज़ान में आपने 20 बार लिखना है, तो आप एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ले दें, आज से लिख लीजिए कि इबादत करना और बात है, इताअत करना और बात है। इबलीस इबादत गुजार बना, इताअत गुजार नहीं बन सका। और आज भी इंसानों में अक्सरियत का यही हाल है, इबादत शौक से करते हैं, इताअत करने के लिए फिक्र में पड़ जाते हैं। वही रब कहता है अकीमुस्सलात, तो नमाज़ें पढ़ते हैं, और वही कहता है कि छोड़ दो रिबा को, तो सोच में पड़ जाते हैं। 5 वक्त के नमाजी तहज्जुद गुजार भी सूद से अपने आप को पाक नहीं कर पाते, हराम से ख़ुद को पाक नहीं करते। एक ज़ुबान से सारी बातें। मैं इस बात को कहते हुए सिर्फ अहमियत दिलाने के लिए आपको छोटा सा बताऊं कि हमारे कल्चर में पैदा होने के बाद बच्चों के खतनों का हुक्म है ना, सबको पता है ना, और अकीके का भी सबको पता। आप अपने सारे जानने वाले अगले पिछलों को जहन में ले आइए, किसी का बच्चा पैदा हो, क्या कभी आपने एक बार भी सुना कि बेटा पैदा हुआ है लेकिन उन्होंने कहा हमने नहीं इसके खतने कराने या हमने इसका अकीका नहीं कराना? वो तो बड़े होने पे भी उनके अकीके करते हैं। लेकिन सेम हदीस है जिसमें खतनों का भी जिक्र है और उसी में मूछों के दर्शवाने का भी जिक्र है। एक हदीस है, 4 चीज़ें, अभी इसकी बात नहीं करूँगी। अपनी मर्ज़ी की एक चीज़ तो ले लेंगे और बाकी चीज़ें किधर हैं? दाढ़ी छोड़ने का हुक्म भी उसी हदीस में, जिस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लम की बातों का पता चलता है, बाकी का छोटी छोटी बातों पे हम बहसें करते हैं, इतने बड़े हम दीनदार बनते हैं, फितने खड़े करते हैं, लेकिन हम सुन्नतों को नहीं मानते, गेटअप ख़राब होता है। तो याद रखिए, ये इबलीसियत है। इस पूरे सबक में आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सूरत बनी इसराइल में जब ये किस्सा आएगा तो इतना खुल के शैतान हमारे सामने आ जाएगा, कैसे लगेगा कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम सब अपने आप को चेक करें, हमारा रवैया शैतान वाला। इधर आदम की कोई बात नहीं आई, आपने नोट किया होगा, सूरह बकरा में उसके ऊपर बात हुई थी। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि इंसान तो अपनी असल देख, तू है क्या? अगर तू उन्हीं सिफली जज्बों पे पड़ा रहा जो जिस्म के तकाजे हैं, तो फिर शैतान के हाथों में तरने वाला बनेगा। बंदे की असल वैल्यू जो है ना, उसका इखलास है। खालिस बंदे पर ना तो माहौल का असर होता है, ना मशरिक और मगरिब का असर होता है। आप देखिए कि खालिस बंदे को आप ऐसे सोचिए जैसे सोना, सोना हर हाल में चमकता है, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो ना तो साथ आपको बुकलेट मिलेगा कि पहले इसको पढ़ ले, इसको पानी ना लगे, इसको पसीना ना लगे, इसको परफ्यूम ना लगे। अब आपको कोई चीज़ मिलती है, आपको नहीं पता चल रहा कि ये सोने की है या पानी सोने का चढ़ा है या पीतल की है, कैसे पता चलेगा? डिब्बिया में बंद रखी रहेगी ना, कभी नहीं पता चलेगा, बनी बहुत खूबसूरत होगी, बिल्कुल सेम लुक। पता कब चलेगा? जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम क्या है? ये डिब्बिया में बंद बैठे हुए हैं ना, कोई नहीं पता चल रहा इस वक्त भी। जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में जाते हैं ना, कुछ की तो चमक 2 दिन में मिट गई, कहते हैं ओहो निराल पीतल ही था, देखो 4 दिन भी नहीं चली, ले जाए जाके आप कंपनी को, आप कहते हैं आपने तो 1 साल की गारंटी दी थी। वो कहता है ये देखे पानी डाला तो पानी में आधी डाला था, ये पहली बात लिखी, इसको पानी ना लगे, इसको कहीं ब्लीच डाल के धो तो नहीं लिया। कोई गारंटी नहीं देगा, सोना टूट भी जाए, सोने को जला भी दें, उस पर काला नीला रंग करा लें, जाएंगे फिर कीमत दे जाएगा। और आर्टिफिशियल चीज़ चमकती भी आज ले आए, पहले दिन आपको वो बता देंगे कि रीसेल कोई नहीं है। देखिए बाहर देखने में सोना बहुत महंगा होता है, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि आर्टिफिशियल चीज़ें जो हम इतनी महंगी खरीदें, मिलना कैन पे, एक तो जान का सोखा, हर वक्त का फिक्र, फिर दूसरी बात यह है कि कल ज़रूरत पड़गी तो बेच ही नहीं सकते, वो तो उसी दिन ख़त्म हो गया जिस दिन ख़रीद लिया। खूबसूरत तो वाकई वो बहुत लगता है, हालांकि सोना क्या होगा, आपके नहीं किसी और के काम आ जाएगा। तो इंसान जो है ना वो सोने की तरह मुखलस, लेकिन बस दफ़ा हमारे ऊपर सिर्फ सोने का पानी चढ़ता है। अब ये 13 पारे हम सबको अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं। सब लोग शैतान के आगे हार जाते हैं, कोई ना कोई नाम लेकर, और शैतान जिन लोगों के आगे हारता है वो है इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे मुखलस बंदों पे मेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इसलिए आज इसकी हम फिक्र करें कि हम मुखलस बने। हम ये बातें बढ़ाते रहते हैं, इखलास कोई नहीं होता, सुन्नत तरीका नहीं होता। हम गिनते हैं बालिश्तों से कितने नफिल पढ़े, कितने काम किए, कितने सपारे पढ़े। जिस चीज़ को आज के बाद अगर आप और मैं बढ़ा सके वो हमारा इखलास है, और इखलास समझ ही नहीं आता जब तक रब की रबूबियत और बंदे की अब्दियत ना समझ आए। इसीलिए अल्लाह ने हमें मौका दिया, तो फिर रमज़ान में अपने आप को चेक करेंगे, ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ अभी हमारे ऊपर पानी चढ़ा सोने का, अभी अंदर बड़े घोट खपट हैं। फिर आप देखिए कि जो यहाँ बात की गई है कि दिलों के बुग़ज़ ख़त्म करेंगे, एक और लिखिए, ये जो दिलों के गंदगी होती है ना, ये बंदे को नेकियों से कैसे महरूम कर देती है, ज़ाहर नहीं पता चलता। हम कहते हैं नहीं हमारा दिल साफ है, नहीं, दिल में जब किसी के लिए मैल आता है ना, तो अल्लाह ताला बंदे को कोई ना कोई बहाना बनाकर किसी नेकी से दूर कर देगा। ये एक इतना बेसिक क्राइटेरियन है कि अगर मैंने अपने लिए अपनी ज़िंदगी में भर लिया तो मैं कभी भी अपने दिल को गंदा रख के रात को नहीं सोऊंगी। एक रात एक सहाबी की तहज्जुद कज़ा हुई तो अगले दिन रोने लगे, लोगों ने कहा सब्र करो कोई बात नहीं नमाज कज़ा हुई है, कहते नहीं मैं तहज्जुद की नमाज के कज़ा होने पर नहीं रो रहा, वो तो नफिल थी, मैं वो गुनाह ढूंढ रहा हूँ मेरे जिस गुनाह की वजह से मुझसे ये नेकी मिस छिन गई। लोग नेकियां से महरूम कर दिए जाते हैं कब, जब उनके दिलों में बुग़्ज़ होता है। हदीस सुनाती हूँ, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनसे किसी ने पूछा कि आप लोग रमज़ान को वेलकम कैसे कहते थे, हाउ डिड यू ऑल वेलकम रमज़ान। हम भी तो अब रोज़ दरसों में यही लोगों से पूछ रहे हैं, अच्छा क्या तैयारियाँ की हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ज़रा इब्ने मसूद का जवाब सुनिए, और इसको अगर कहना चाहूँ कह लूँ कि गोल्डन मार्कर से लिख लीजिए अपने दिल की तख्तियों पे। कहने लगे कि हम में से कोई ऐसा नहीं था कि जो रमज़ान का चांद देखता और उसके दिल में दूसरे किसी मुसलमान के बारे में एक जर्रे बराबर भी कोई नेगेटिव जज्बा होता। इंग्लिश में पढ़ के सुना देती हूँ, ही रिप्लाइड नन ऑफ अस वुड वेलकम द क्रिसेंट एंड इन हिज हार्ट वॉज एटम वर्थ ऑफ हेटेड टूवर्ड्स हिज ब्रदर मुस्लिम। हम में से कोई ये कह सकता है, हमें तहज्जुदों और तरावियों ने और नमाजों ने क्या देना है अगर दिल में गिल होगा, तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि अपने दिलों को दुनिया में साफ कर लें, फिर जन्नत में जाके जो होना है ना वो यही हो जाएगा। फिर आप देखिए कि मुखलस बंदा किस किस चीज़ से होता है, शिर्क से मुखलस होता है, रियाकारी से मुखलस होता है, तारीफ़ो तनकीद से मुखलस हो जाता है। पीछे भी सूरह रात में पढ़ चुके हैं ना, जब भट्टियों में डाला जाता है किसी धात को तो खालिस चीज़ अलग हो जाती है। पता क्या चला कि हर बंदा शैतान के फंदे में है, लेकिन मुखलस पर शैतान का ज़ोर नहीं चलता। एक रास्ता है जिससे शैतान लोगों को बहुत जल्दी फांस लेता है, और वो है दूसरों की तारीफों में आ जाना। लोगों की तारीफों में आकर बहुत सारे लोग शैतान के हाथों में आ जाते हैं। और एक दूसरा रास्ता भी है, और लोगों की तनकीद के जवाब में अल्लाह के रास्ते से दूर हो जाना। हमें अल्लाह से ये दुआ करने की ज़रूरत है कि हमारे दिलों को दूसरों से इतना बेनियाज कर दे कि हम दूसरों को देखने की बजाय अल्लाह को देखें कि अल्लाह ताला हमारे साथ क्या मामला करता है। सवाल पैदा होता है कि ये किस किस्म का गिल था जो अल्लाह ताला ने दिलों से दूर करने की बात की है। तो आप देखिए कि इंसानों के बीच में रहते हुए छोटी छोटी बातों पर खिंचाव आने लगता है। सगी बहनें, माँ बेटी, उनके दिलों में भी एक दूसरे के लिए गिल आता है, आ सकता है। ये ऐसे ही जैसे अब यहाँ से हम बाहर पैदल जाएंगे थोड़ी दूर तो पाँव में धूल पड़ेगी, ये नामुमकिन है कि ना पड़े। सब्र ना हो, बर्दाश्त ना हो तो एक दिन में शौहर बीवी एक दूसरे से दूर हो जाएं, एक साथ ना रह सकें। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं कि इसको साथ लेकर ना फिरो। पसीना आता है, कोई पसीने वाला जिस्म लेकर नहीं सोता। मिट्टी लगती है, कोई मिट्टी वाले पाँव लेकर नहीं सोता। तो दिलों में जब गिल आ जाए तो उसको दूसरी तरफ कर दो। और आप देखिए, इंसानी ताल्लुक कभी एक जैसे नहीं रहते। वही जो कभी बहुत प्यारा होता है एकदम दिल खट्टा हो जाता है उससे, कभी शिकवा आ जाता है, कभी कुछ होता है, मिजाज खिलाफ होते हैं एक दूसरे के, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, खाम खाम मिसअंडरस्टैंडिंग आती हैं। और शैतान इसी रास्ते से लोगों को पकड़ता है कि इसको ज़रा दूसरे से काटो ताकि मेरा इस पर ज़ोर चले। नतीजा क्या निकलेगा? शैतान की हाथों में आ जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे दिलों को पाक कर दे। ये जो लफ्ज़ सुरूर आया, ये शरीर की जमा है, दुल्हन की मसहरी को कहते हैं, ऊँची मसनत। अरबों में अमूमन लोग फर्शों पे बैठते थे, जिसको आप कहते हैं ना फर्शी, ज़मीन पे बैठते थे। तो उनके लिए तो ये बात ही बहुत बड़ी थी कि जन्नत में कौचीज़ होंगी। ये हमारे लिए तो नहीं होगी वैसे बात, हमारी तो दुनिया की भी बहुत खूबसूरत कौचीज़ होती है ना, लेकिन उनके लिए ये चीज़ बहुत ही प्यारी थी। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ कि खदीजा को जन्नत में सोने के महल की खुशखबरी दे दो, जिसमें ना शोरो शगफ होगा, ना कोफ्त होगी और ना थकन होगी, और कोई वहाँ से निकाला ना जाएगा। ये है वो जन्नत जिसमें जन्नतियों को भेजा जा रहा है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। रिवायत में आता है कि जन्नतियों को जन्नत में भेजने के बाद कहा जाएगा कि तुम यहाँ हमेशा रहो और तुम्हें यहाँ से निकाला नहीं जाएगा, तुम कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम हमेशा जवान रहोगे। ये सब कुछ तो वहाँ होगा, हम आज की बात करते हैं। तो इसलिए उस जन्नत को पाने के लिए इस दुनिया में कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत रिवायतें हैं, लेकिन फिर बात आगे चली जाएगी, बस यहाँ पर इतफा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم